कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंदे वंदेनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभुं, नीचोपि यत् प्रसादात् स्याद् भक्ति शास्त्रः प्रवर्तकः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितर्शतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय, भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं, कालिना नातिदीर्घेणा भगवान् विशते हृदि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा। जस्ट अ सेकंड,
हम लोग श्रीमद् भागवतम के आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय के सातवें श्लोक को देख रहे हैं। ये गजेंद्र जी की स्तुति है और कथा हम आप समझता हूं कि आप सभी लोग समझते ही होंगे, सब लोग रेगुलरली जानते हैं कि इस समय गजेंद्र नाम के हाथी हैं और उनके उनके पांव को एक ग्रह ने पकड़ा हुआ है। तो उस समय वह भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 6 दिखाइएगा, बहुत ही गंभीर, गंभीर में तो बहुत ही गहरी प्रार्थनाएं हैं। तो पहले सोच रहा था कि पहली प्रार्थना है उसको पूरा लिख करके लिंक बताया जाए, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है, तो मैं खाली पिछले श्लोक का और इस श्लोक का लिंक बता करके शुरू करूंगा। चलो मेरे पीछे बोलिए,
दिख रहा है?
यस। नायस्य देवार्षयः पद, हाँ, नायस्य देवार्षयः पदं विदुर जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीर्तुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते, और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं जो वशों के तुल हैं। न तो देवता तथा मुनि न ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तो श्लोक का सार क्या है? भगवान को कोई नहीं समझ सकता तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा। जब भगवान को समझ ही नहीं सकते, जब देवता समझ नहीं सकते हैं, वैसे ये भी एक समझावट है कि नहीं? ये भी अपने आप में एक समझावट है कि भगवान को देवता नहीं समझ सकते हैं। तो ये भी भगवान का गुण है कि समझ में आ रहा है? आप लोग समझ रहे हैं ना? आप लोग समझ रहे हैं ना कि देवता भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि देवता के लिए भी अगम है भगवान, अगम है उनका तत्व। तो भक्त लोग फिर से निरुत्साहित हो जाएंगे, फिर समझ में किसी को आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसके उत्तर में आज का श्लोक है। लिंक सबको समझ में आ गया? भगवान यद्यपि इतने महान है कि देवता भी उनको नहीं समझ सकते, इसीलिए इंद्र भ्रमित हो गए थे। तो अब मान कोई प्रश्न करे कि क्या कोई समझ भी पाएगा उनको, तो उस पे आज का श्लोक बोल रहा है। ठीक है, तो उसको गाया जाएगा थोड़ा सा, मेरे पीछे गाइएगा, मेरे ख्याल से कुछ शक्ति तो होगी। कौन व्यक्ति भगवान को देख पाएगा, या कौन लोग भगवान को देखते हैं, बहुवचन बोलूंगा, और उसके लोग क्या करते हैं, वो सब हम आज सुनने वाले हैं। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम्। हाई ट्यून में गाएंगे, हाई ट्यून। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्ति लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्म भूतः सुहृदः समे गतिः। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्ति लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्म भूतः सुहृदः समे गति। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्ति लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्म भूताः सुहृदः समे गतिः। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्म भूताः सुहृदः समे गतिः। एक बार एक प्रभु जी बोलेंगे और इसी ट्यून में गाइएगा, ट्यून नहीं चेंज कीजिएगा क्योंकि काफी कुछ बोलना है इसके ऊपर। एक बार आप बोलिए, एक बार एक माता जी बोलेंगे और उनको
दिदृक्ष वो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्ति लोकव्रतम व्रणम वने भूतात्म भूताः सुहृदः समे गति।
माताजी
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्ति लोकव्रतम व्रणम वने भूतात्म भूतः सुहृदः समे गति।
सब लोग बस साथ में गाइए,
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्ति लोकव्रतम व्रणम वने भूतात्म भूतः सुहृदः समे गति।
शब्दार्थ देखिए, दिदृक्षवः भगवान को देखने की इच्छुक,
यस्य
जिसके,
पदम
चरण कमल,
सुमंगलम
कल्याण प्रद,
विमुक्त संगः
भौतिक दशाओं से पूरी तरह मुक्त,
मुनयः
मुनिगण,
सुसाधवः
आध्यात्मिक चेतना में बढ़े चढ़े,
चरन्ति
अभ्यास करते हैं,
अलोक व्रतम
ब्रह्मचर्य
वानप्रस्थ
या सन्यास के व्रत, गृहस्थ का व्रत नहीं है इसमें, इसीलिए बोला है अलोक व्रत। ध्यान दिया आपने सबने, ठीक है।
अव्रणम
बिना किसी त्रुटि के,
वने
वन में
भूतात्म भूताः
जो समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं,
सुहृदः
जो सबों के मित्र हैं,
सह
वही भगवान,
में
मेरा,
गति ही
गंतव्य। अनुवाद, जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा सन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याण प्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं, वही भगवान मेरे गंतव्य हों। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं, वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडितः समदर्शिनः, वे हरेक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं। यह समझते हुए कि भगवान हरेक के मित्र हैं, सुहृदं सर्वभूतानां, वे भगवान की ओर से हरेक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। राष्ट्रों या जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवद गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत में ऐसे उपदेशकों को परमहंस कहा जाता है, जैसा कि विमुक्त संग शब्द से सूचित होता है। उन्हें भौतिक परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए वह ऐसे भक्त की शरण में जाए। ओके, एवरीवन सेटल डाउन, ठीक है। संस्कृत दिखाइए, ओके। अभी बहुत मूवमेंट होगा तो मेरे को कठिन होगा समझाने में, जो जहां पे है वो बैठ जाए। जस्ट ये सुखदेव गोस्वामी की समाधि भाषा है, इसको बाह्य वृत्ति से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो थोड़ा सा शांति से बैठ जाएंगे तब तो हम कुछ बोल पाएंगे, नहीं तो कठिन होगा मेरे लिए बोलना। देखिए ये श्लोक भगवान की महिमा का वर्णन हो रहा है, ये देख पा रहे हैं क्यों? दिदृक्ष वह, देखने की इच्छा से, देखा नहीं अभी, देखने की इच्छा से, ध्यान दीजिएगा फिर से बोल रहा हूं, मैं यहां पे लिखा है दिदृक्ष वह, देखे नहीं है उन भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने की उत्कट इच्छा है, और वो एक इच्छा ही इस जगत की हर इच्छा का निर्मूलन करने में समर्थ है। ये पहले दिख रहे हैं आप, हम सभी ने सुना है, कम रोज गाते ही हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। अब अगर पूछ लिया जाए कि हम में से किसको भगवान के रूप का अनुभव कंदर्प कोटि कमनीय रूप में हो रहा है, तो ईमानदार व्यक्ति यहां पे हाथ नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि यदि भगवान के कंदर्प कोटि कमनीय रूप का अनुभव हो गया होता तो फिर जगत के किसी भी रूप के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते थे, रसगुल्ले के प्रति भी नहीं, रसगुल्ला भी अच्छा लगता है देखने में, इज इट नॉट, नथिंग वुड बी इंटरेस्टेड। तो अभी हम लोग साधक हैं, लेकिन आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस जाड़े में अपना खोल खोल करके सारे कछुए, कछुआ बोलते हैं हमको, हम नहीं बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं, कूर्मो अंगानी व सर्वशः, अपना खोल खोल करके व्यक्ति सब यहाँ पे आए हैं, पूरे अंग सहित आए हैं ना, पूरा शरीर सहित वृंदावन में, किस लिए? कि हाँ ये भागवत सुनेंगे, ये भक्ति करेंगे, और इसके द्वारा एक दिन भगवान का वो रूप का अनुभव प्राप्त होगा। जो भक्त समझते हैं इस बात को, भगवान तो सुंदर हैं और भगवान कंदर्प कोटि कमनीय भी हैं, लेकिन जितनी भक्ति हृदय में होगी उसके अनुरूप भगवान के माधुर्य का अनुभव होता है। तो दिदृक्ष वह, उस रूप को देखने के लिए, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, वो जान मैं म्यूजिकल कथा नहीं कहता हूं, तो एक लोग जितने सब वहां उपस्थित भक्त हैं, आप लोग पे मेरा डांटने का अधिकार तो है नहीं, तो इसलिए निवेदन करने का अधिकार है कि एक सारे ब्राह्मण अपने एक फोन की आहुति इस यज्ञ में दे दें कि साइलेंट मोड पे रहे, एक बार आप बजा बजा के डिस्टर्ब, भाई सहायता नहीं कर सकते तो भागवत में कम से कम डिस्टर्बेंस तो मत बनाइए, बुरा नहीं मानिएगा, भागवत में असुर लोग डिस्टर्बेंस करते हैं, और बलराम जी याद है ना, कौन सा वो असुर था ऊपर से लाल दाढ़ी वाला, उसको पकड़ कर गिरा के मार दिए थे। तो भागवत में सहायता नहीं कर सकते तो अपने रूम पे रह सकते हैं, हमारी अपेक्षा, मेरे भक्त लोग जानते हैं कि हमारी अपेक्षा ये नहीं रहती है कि बहुत ज्यादा लोग आए, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो डिस्टर्ब करे, समझ आ रहा है? बिकॉज देन आई वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्लेन, देखिए मेरी वाणी उधर चलेगी ना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ फोन से। ओके, दिदृक्ष वह का मतलब हुआ अत्यंत उत्कट इच्छा, ये नहीं कि चले देखें, ये नहीं है, ऐसी इच्छा नहीं, अत्यंत उत्कट समझते हैं, एकदम प्रबल, दबाए न दबे ऐसी इच्छा से, यस्य पदम सुमंगलम, पदम मतलब उनके अलग अलग अर्थ लिए गए यहाँ पे, पदम मतलब पद मतलब चरण कमल, इतने सुंदर उनके चरण कमल है, या पद का अर्थ स्वरूप भी लिया गया है, कैसा है? सुमंगल, मंगल अर्थात सच्चिदानंद, परमानंदमय रूप है, उस रूप को देखने के लिए। इज इट ओके? जैसे भगवान का शब्द है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर यथैवांजस संप्रयुक्तम। जितनी जितनी मात्रा में आत्मा मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध होती है, उतनी उतनी मात्रा में वह मेरे माधुर्य का अनुभव करती है। कुछ समझ में आ रहा है मैं श्लोक क्यों कोट कर रहा हूं? उस माधुर्य को आस्वादन करने की लोलुपता, लालसा, लालच के कारण। कैसे कैसे मधुरता उत्पन्न होता है? तो कह रहे हैं कि चक्षुर यथैवान जैसे संप्रयुक्तम, आंखें जैसे अंजन लगाने से धीरे धीरे अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये पहली लाइन आपको समझ में आ रही है, भगवान इतने आकर्षक हैं, क्यों आकर्षक हैं? क्योंकि सुमंगलम, मंगल ही नहीं, सुमंगल। देखिए हम सभी लोग परमानंद, हम लोग आनंद स्वरूप हैं, इनकेस नहीं पता हो तो, आत्मा के रूप में, लेकिन वो आनंद तिरोहित है अभी। तो जब भक्त जानते हैं कि भगवान की भक्ति जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही सुख भगवान से हमको प्राप्त होने लग जाएगा, इज इट नॉट। दिदृक्ष वह यस्य पदम सुमंगलम, मतलब उस मंगलमय भगवान के स्वरूप को देखने की इच्छा से क्या हो जाते हैं, विमुक्त संगा। भगवान के दर्शन से नहीं, भगवान के दर्शन की प्राप्ति की इच्छा मात्र से विमुक्त संगा। इसके काफी अर्थ लिए गए हैं, एक अर्थ भी जो हम यहां पे लिए लेंगे वो ये है कि हर प्रकार की आसक्ति से विशेष रूप से मुक्त। सबसे बड़ी आसक्ति जगत में है पत्नी और बच्चों की आसक्ति। हमको एक गृहस्थ भक्त बोल रहे थे कि ये सब रियलाइजेशन, रियलाइज, सेल्फ रियलाइज्ड लोग ही बोलते हैं। भक्त प्रभुपाद कई बार बोलते हैं वन शुड हियर भागवतम फ्रॉम सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स। तो अपना सेल्फ रियलाइजेशन बोल रहे थे कि प्रभु जी अब जितना भी झगड़ा हो जाए, मन करता है घर छोड़ दें, लेकिन फिर बोल देगी आप चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो फिर आ जाता हूं। हम नाम नहीं रख रहे लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन बता रहे थे अपना। तो कहने का अर्थ है कि, या एक परम पूज्य राधागोविंद महाराज बता रहे थे कि ये व्यक्ति घर छोड़ के चला गया, अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा करके चला गया। तो फिर वो अब घर में तो आ सकता था, बाहर कौन पूछ रहा है उसको, आ गया घर में, कहता तुम्हारी वजह से मैं कभी नहीं आ रहा, बच्चों का मुंह देख करके मैं आ गया। और कभी कभी बच्चों से दुखी होकर चला जाता है, फिर लौट के आता, कहता तुम लोगों की तो शक्ल देखना नहीं चाहता, लेकिन इस बुढ़िया को सोच करके मैं आ गए। तो आप देख रहे हैं कि जगत में व्यक्ति का घर गृहस्थी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति हमारे पास आए, हमने उनको बोला, से प्रीचिंग कर रहे थे, हमने कहा भगवान श्री कृष्ण 16108 पत्नियों को छोड़ करके हस्तिनापुर में पड़े रहते हैं, और आप एक पत्नी को छोड़ करके हस्तिनापुर से वृंदावन नहीं आ सकते हैं। तो कहते हैं उनके पास 16108 थी ना, मेरे पास तो एक ही है। अब बताओ बेशर्म है लोग, क्या कहा जाए। तो इस प्रकार से संग में आसक्त रहते हैं, पत्नी में, बच्चे में बहुत आसक्ति रहती है, लेकिन विमुक्त संगा। इसी को उद्धव जी ने कहा है, तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आस्वाद्य तजन्ति अन्य स्पृहाम जनः। कि हे कृष्ण, आपकी क्रीडा, आपकी लीला कथा इतनी मादक है, इतनी आकर्षक है कि तजन्ति अन्य, जो उसके कानों के द्वारा इस पीयूष अमृत को, पीयूष मतलब अमृत को आस्वादन करता है, तो तजन्ति अन्य स्पृहाम जनः, वह अन्य इच्छाओं को त्याग देता है। अन्य इच्छा का अर्थ क्या हुआ, अन्य इच्छा का यही अर्थ हुआ, पत्नी की आसक्ति, बच्चों की आसक्ति, और यहां तक की मुक्ति की भी आसक्ति, इच्छा को त्याग देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाता। तो हर प्रकार की आसक्ति से विशेष न मुक्त, केवल एक अर्थ है, भी आगे भी अर्थ आपके सामने प्रकाशित किए जाएंगे। तो विमुक्त संग कैसे हो गए मानो पूछे, तो कहते मुने यह मननशील। वो विचार कर रहे हैं, प्राय जगत में लोग सोचते नहीं है, अगर आपको पता है कि नहीं पता, इंग्लैंड में एक फिलोसफर बोले कि लोग सोचते नहीं हैं और मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूं तो लोग मुझे बहुत बड़ा फिलोसफर मानते हैं। मुनिया का मंत्र है मननशील। मननशील का मतलब क्या रहेगा जगत में हमारा, पहली देखिए, मैं क्लास ना स्पॉन्टेनियसली देता हूं, यहाँ पे कोई व्यक्ति गृहस्थ नहीं है, हम सब लोग भगवान के अंश हैं, तो गृहस्थी पे अटैक, किसी गृहस्थ पे अटैक नहीं किया जा रहा, प्लीज ऐसा मत मानिएगा। यहाँ पे जो मेरे मुख से निकल रहा है उसको यथावत ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा, गुस्सा आए तो आप जा भी सकते हो, लेकिन हम सत्य बोलने के लिए उपस्थित हैं। कोई भी गृहस्थ अपने हृदय में थोड़ा भी मनन करे कि गृहस्थी जुटा करके की सुख पाइया, और ये भागवत में बोला गया है कि सब लोग प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्त करने का, लेकिन सुख मिलता नहीं है और दुख की निवृत्ति होती नहीं है। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी बता रहे थे कि एक गृहस्थ का अनुभव, वो बता रहे थे कि महाराज जी खाने की समस्या सॉल्व हो गई है, लेकिन और बहुत सारी समस्या बढ़ गई है ना। सोचता है कि यानी हम बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सब लोग सेल्फ रियलाइज्ड हैं इस बारे में, और जो नहीं है वो हो भी जाएंगे, वो हम सभी के चरण में प्रणाम करते हुए कि आगे बढ़ जा रहे हैं। कि मुनिया मतलब मननशील, क्या जाएगा साथ में, बहुत सुंदर बात है। अभी तक क्या मिला, दुख वर्जम, दुख की एक्सेप्ट मिला क्या, और उसके बाद जितनी तुमने मेहनत करी है उसका आगे क्या लाभ होने वाला है। तो जो मुनिजन है वो समझते हैं कि हाँ, अरे को अति प्रयास, जीभ हिलाने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, तो क्यों ना इसमें मेहनत की जाए, और इस परिवार को चला चला करके मेहनत करने से क्या फायदा होगा। हां, सुखदेव गोस्वामी सही कहते हैं, क्या श्लोक है वो, आत्मसैन्यु, क्या श्लोक है वो,
देह पत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्य असस्वपि तेषां प्रमत्तु निधनम त्वश्यन्नपि न पश्यति।
देह और बच्चे और पत्नी और ये सारी जो सेना व्यक्ति ने स्वयं ही इकट्ठा करी है, वह सब तो मरते हुए दिख रहे हैं। तो जो बुद्धिमान अबुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं देख पाता ना, बुद्धिमान जो मननशील हो कहता ना इस जगत में दम नहीं है। जैसे कि शिवजी बोलते हैं, महामुनि शिवजी, वो भी बहुत मननशील कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शिवजी बोल रहे हैं उमा जी को, दुर्गा जी को बोल रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं कि भगवान की सेवा के, भगवान की सेवा सत्य है और बाकी सब सपने जैसा है। और मैं समझता हूं हर साधक जो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है वो पीछे मुड़ करके देखेगा अपने जीवन को, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं स्वप्नवत जी रहा था। तो मैं मुनिया पे कह रहा हूं कि मुनिया शब्द मननशील है, बच्चों को अगर बाहर ले जाए तो अच्छा रहेगा, मैं नहीं क्लास दे पाऊंगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। ये बच्चे वाली माँ इस बच्चे पे भी दया करें जो आपके सामने बैठा है, आप बच्चों का तो चुप करा दीजिए नहीं तो फिर लेके जाइए, उसकी आवाज में यहां तक डिस्टर्ब करती है। और ये भी बहुत बड़ी बाधा है अन्य भक्तों के लिए जो सुनते हैं, क्योंकि मैं नीचे श्रोता के रूप में बैठा रहता हूं तब कुछ बोल नहीं पाता हूं। हमने कहा सुखदेव गोस्वामी को बाहर, अबे बच्चा बोलेगा कीर्तन करेगा लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, डोंट। ये बड़ी कठिनाई है। मैं इसके लिए देखिए बलराम हॉल में क्लास देने में बड़ा संकोच करता हूँ कि हमारा पित्त बढ़ जाता है जब क्लास में डिस्टर्बेंस होता है। फिर मुनिया पे आ जाते हैं मुनिया, और ऐसा नहीं खाली मननशील है, सुसाधवा, सुसाधवा मतलब बहुत बढ़िया आचरण कर रहे हैं, बहुत साधना में लगे हुए हैं। और इस प्रकार से देखने के लिए तो साधना का तो घर में ही कर रहे होंगे, अच्छा फ्लैट है तो कहते हैं ना, चरन्ति अलोक व्रतम अवर्णम वने, वन में चरन्ति शब्द को कैसे प्रभुपाद ने देखिए अनुवाद किया है, अभ्यास करते हैं, चरन्ति मतलब अभ्यास करते हैं, किस चीज का अभ्यास करते हैं, तो कहते हैं अलोक व्रत का अभ्यास करते हैं। तो भाई ये अलोक व्रत से मतलब हुआ कि कुछ लोक व्रत भी होगा, तो लोक व्रत क्या है, लोक व्रत ये है जिसके लिए सभी लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि ये व्यक्ति चिंता में क्यों नहीं गया। लोक व्रत है इसके पांव में बेड़ी डाल दो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लोक व्रत ये है कि भाई स्त्री स्वीकार करे, बच्चे पैदा करे, खाए पिए और ऐसे ही वो मर जाए, यह है लोक व्रत, कोई विरोध तो नहीं है, ये लोग में यही देख ही रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन अलोक व्रत का अर्थ है, श्रीधर स्वामी अर्थ लिए हैं, ब्रह्मचर्य आदि, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो अब एक प्रश्न बनेगा, तो फिर क्या केवल ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, नहीं गृहस्थ भी पालन कर सकते हैं, क्या हम निसंकोच बोल सकते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो जब संतान हो गई तो क्या उसके बाद आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति ये कह रहा है, चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे किसी में, कि ये कठिन है, तो उसके संग कठिनाई यहां नहीं है, कठिनाई दिदृक्षव की है। श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं, हम केवल प्रभुपाद जी की बात को दोहरा रहे हैं, कुछ कठोर जरूर लगेगा, कहते हैं अब ये इंद्रिय तृप्ति अगर बहुत अच्छी है तो 24 घंटे क्यों नहीं करते हो, स्त्री संग आदि, महाभोगी व्यक्ति भी 24 घंटे तो नहीं करेगा। और खुद एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए, मैं कृष्ण का ही हूं और इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, यही बेड़ी है, ये मुझको बांध के रखी है, क्यों ना इसे काटने के ही प्रयास में रहूं, इसको प्रबल बनाने के प्रयास में क्यों बढ़ूं। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, अलोक व्रतम, प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं, लोग नहीं समझते कि ब्रह्मचर्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति कितना प्रबल बलशाली बन सकता है। प्रभुपाद जी गांधी जी का उदाहरण देते कि 36 साल की उम्र से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे तो देखिए अंग्रेजों को भी यहां से हटा दिया। और ब्रह्मचर्य अपने आप में कोई भक्ति नहीं है, लेकिन इतनी शक्ति इतनी प्योरिटी देता है कि अब उसको अगर भक्ति के संग जोड़ दिया जाए तो बहुत बहुत ज्यादा उत्साह होगा। प्रभुपाद हम स्पष्ट कहते हैं क्यों भक्ति में व्यक्ति को दृढ़ता नहीं आती है। एक्सेसिव सेक्स लाइफ, अत्यधिक भोग करने की वजह से व्यक्ति को संकल्प ही नहीं उठता है। ये एक अर्थ है, अभी और भी अर्थ रखे जाएंगे। अलोक व्रत मतलब यह सामान्यतः लोग जगत में देखते, आपने शादी नहीं करी आप समझ में आ गया ना, आपने शादी नहीं करी, बीड़ी नहीं पहने आपने, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो पीठ पीछे बोलते हैं। आप लोग समझते ही होंगे अगर किसी लड़के की शादी नहीं हुई है, अच्छा जॉब में आ गया है, तो आप पीठ पीछे बोलते हो अरे भैया बीड़ी डाल दो, इस कौन वालों को संग कर रहा है, कहीं जॉब छोड़ वोड़ के ना चला जाए। ये सब बातें चल रही हैं पीछे आपके, अगर आपको ना पता हो तो। ये आप लोग देखे ना, अरे शादी नहीं करेंगे आप। जो लोक में सभी व्रत पालन कर रहे हैं उसको आप नहीं करने वाले हैं, कल्याण कैसे होगा आपका, इत्यादि इत्यादि। और न सिर्फ अलोक व्रत का पालन करते हैं अपितु अव्रणम, उसमें कोई छिद्र नहीं आने देते हैं कि 6 महीना किया और उसके बाद छोड़ दिए। केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य भगवत धाम सॉरी भगवत ध्यान जप आदि सभी नियम इसमें लिखे जाएंगे। सारे जगत के लोग भागवत नहीं सुन रहे हैं, तो आप लोग भी अलोक व्रत कर रहे हैं। अलोक व्रत का अर्थ लिया गया है भागवत व्रत, सभी लोग मंगल आरती नहीं जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात। गृहस्थ भी इसका पालन कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि अब केवल सन्यासी और ब्रह्मचारी ही कर सकते हैं। मैं समझा पा रहा हूं, अलोक व्रत का अर्थ है भक्ति का व्रत, इतना माला हम करेंगे ही। अच्छा होगा कि एक व्रत जरूर ले लें कि ब्रेकफास्ट के पहले हम 16 माला करेंगे, बहुत अच्छा व्रत है। न नाम सम व्रत, न नाम सम दानम, न नाम सम यज्ञ, भगवान के नाम के बराबर कोई व्रत नहीं है। तो ये अलोक व्रत है, दुनिया में कितने लोग दिखते हैं जाप करते हुए। बल्कि आप देखिए, एक बार मैं तब मैं स्टूडेंट था और व्हाइट रंग का बीट बैग हम लोग लेते थे, और ट्रेन में जा रहे थे और जप कर रहे थे, व्यक्ति बोला क्या ये आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है क्या आपने ये क्या कहते हैं उसको प्लास्टर बांधा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि जो माला को प्लास्टर मान रहा है, तो उसके चित्त में तो कभी आएगा ही नहीं कि ये ऐसा भी कोई अलोक व्रत है जिसमें लोग जप करते हैं। आप लोग क्या भी लोग आश्चर्य करते होंगे कि ये क्या लेके आ गए। सामान्यतः बाहर के शहरों में जप माला नहीं मिलती, तो ये अलोक व्रत हो गया कि नहीं, लोग करते ही नहीं है, तो बेचने का क्या प्रयोजन है। ये अलोक व्रत तो यहां वन में मिलता है करने के लिए, वृंदावन में। प्रभुपाद जी वनम गतो यद हरिमाश्रय, तो में कहा है कि वन का मतलब है वृंदावन, तो इसलिए वन में आकर के निरंतर, समझ गए तीसरी लाइन, अभ्यास करते हैं अलोक व्रत का और अव्रणम निरंतर। इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं, कहा जब नहीं आज हमारे सर में दर्द है, ठीक है, कल पूछे कि भाई मंगल आरती क्यों नहीं, ओ प्रभु जी आज देह में बहुत दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द है, ये है अफरान नुकाना। हमारे नए भक्त लोग जब कभी ज्वाइन करते हैं, उन्हें सोचते हैं कि पहले तो प्रभु आज पेट में दर्द है, आज इधर दर्द है, सारा दर्द, पता नहीं सारी बीमारी सुबह के समय ही होती है। देखिए ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान की प्राप्ति करना कठिन है, कठिनाई और कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने साक्षात अनुभव किया, एक व्यक्ति मुझसे 5,000 रुपए लेने के लिए अलीगढ़ से बाइक पे भीगता हुआ आया, पास में तो है ना अलीगढ़, मात्र 110 किलोमीटर। तो आप कोई कहे कि हम अब मंगल आरती के लिए नहीं उठ सकते हैं या हम जप नहीं कर सकते हैं, तो ये थोड़ी कठिनाई है, कठिनाई उसकी दिदृक्षवा की कमी है, देखने भगवान को देखना नहीं चाहता है, नहीं तो बड़ी आसानी से कर सकता है निरंतर। अब निरंतर कहने का करने का क्यों कारण है, बहुत सिंपल कारण है, अवरण समझते हैं, अवरण का मतलब निरंतर, कोई गैप नहीं दे रहा, क्यों, प्रभुपाद जी का शब्द, कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड बाय एनी ऑफ द 9-fold प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड मार्च बैक होम बैक टू गॉड हेड। कुछ समझा पा रहा हूं ये बात, भगवान श्री कृष्ण का संपर्क जो नवधा भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, वह हमेशा जीव को भगवान की ओर अग्रसर करता है। तो जो व्यक्ति वाकई भगवान को देखना चाहता है, वो सुबह उठ के क्या करेगा, चलो अब यात्रा के लिए एक और दिन मिला, अब मैं और कुछ भजन करके भगवान की ओर पास जाऊंगा, इसलिए वो छोड़ता नहीं है। और जो व्यक्ति भगवान को नहीं देखना चाहता, कहता है छोड़ो आज छोड़ो, और ऐसे छोड़ते छोड़ते अरे एक महीने से मंगल आरती नहीं गया, समझ रहे मेरी बात? ये समझा पाया मैं कि वह निरंतर भजन क्यों करते हैं? क्योंकि हर दिन का भजन उसको और अग्रसर कर रहा है भगवान के पास। अब फिर कहेंगे कि वन में क्यों करना चाहता है? अब देखिए, जो भक्त यहां वृंदावन में है तो बिल्कुल इस बात को समर्थन करेंगे कि घर में भजन नहीं होता, वास्तविक रूप से घर में भजन नहीं होता, और इसके प्रमाण स्वयं ध्रुव महाराज हैं। ध्रुव महाराज की मां भी बोली कि बेटा वन चले जाओ, और गुरु जी नारद जी भी बोले कि तत्तात गच्छ भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मधुवन में जाओ, मतलब वृंदावन में आओ। क्यों ऐसा? सब लोग जानते हैं इस बात को कि गृहस्थी में राग और द्वेष ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, और अगर ऐसी चेतना में व्यक्ति फंसा रहा तो व्यक्ति नहीं बात भगवान के बारे में नहीं सोच पाएगा, है कि नहीं? तो बड़ा स्पष्ट है कि वन में ये सब राग द्वेष नहीं चलता है। हाँ, वृंदावन में आने के बाद अगर कोई फंस रहा है तो अपने मुनि, थोड़ा मुनि बने कि वृंदावन में आने के बाद अब उस राग द्वेष में बिल्कुल ना फंसे और एकदम केंद्रीभूत कर ले मन को कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। राग द्वेष में फंस रहे हैं तो पहले ही शब्द को हम आउट हो गए, यानी भगवान को देखने की इच्छा नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि भूतात्म भूता, जो व्यक्ति सभी जीवों को अपने समान मानेगा तो अपने से राग करते हैं, अपने से द्वेष करते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? भूतात्म भूता का मतलब समझ रहे हैं, जैसा मैं चाहता हूं कि मुझसे बर्ताव किया जाए वैसा दूसरों से बर्ताव करना। अब इसमें बहुत गंभीर बात है, जो भी मैं तो मेरी प्रार्थना है भगवान से कि सभी भक्त लोग बहुत अच्छे से भक्ति करें। क्यों? जब आप बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं तो विजिबल रिजल्ट्स देखते हैं भक्ति के। जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष अनुभव प्रभाव क्या है, देहात्म बुद्धि का लोप हो जाना। तो जब व्यक्ति गंभीरता से नामोच्चारण करेगा तो वह देखेगा अपने जीवन में अज्ञान को नष्ट होते हुए, वह स्वाभाविक रूप से कृतज्ञ होगा कि मैं कहां गड्ढे में गिरा हुआ था और वैष्णव ने मुझ पर कृपा करी है, इस कारण से मैं ऐसा हूं। और यह भी देखने का सामर्थ्य होगा कि धन के द्वारा लोगों का दुख नहीं जा रहा है। द कंपैशन ऑफ अ डिवोटी इज नॉट लिमिटेड टू हुअर ओनली मटीरियली पुअर। एक शुद्ध भक्त का कृपा केवल भौतिक रूप से जो गरीब है उन्हीं पे नहीं लिमिटेड, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी धनी हो उसका दुख धन से नहीं जा रहा है। मैं समझा पा रहा हूं कि ये क्यों भूतात्म भूता हो रहे हैं? वह स्वयं भक्ति के प्रभाव को अनुभव कर रहे हैं कि मैं कितना सुखी हो गया हूं, यद्यपि बाह्य रूप से कुछ है नहीं और चाहिए भी नहीं। प्रसाद मिल रहा है, 3x6 का स्पेस मिल गया है सोने के लिए, एक कंबल गद्दा मिल गया है, खोल मिल गया है जिसमें हम घुस सकते हैं, सर्वांग प्रवेश कर सकते हैं, स्नान करने के लिए पानी मिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नान करने के लिए पानी मिल गया है, बहुत सिंपल जीवन। मैं सभी भक्तों को अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पे, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो ब्रह्मचारी हो, जो नाम जप अच्छे से करेगा उसकी ये चेतना आनी ही है, जो नहीं कर रहे हैं ठीक से उनको दिक्कत होगी। ये हम आपस पर विस्तार से नहीं कह सकते, लेकिन ये तारक पारक नाम है हरे कृष्ण मंत्र में, इनका प्रभाव ही है कि व्यक्ति के चित्त में संतोष विद्यमान हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो अलग बात है। अब मैं समझा पा रहा हूं ये क्यों, तो खुद समझ रहा है कि मैं कितने दुख में था और बाकी लोग भी इसी प्रकार दुख में हैं, तो इस प्रकार की भावना से कोई भी भक्त युक्त हो जाता है और वो दूसरों के प्रति ऐसा बर्ताव करता है कि जो वह कृष्ण भावना में अग्रसर हो जाए। Is it explained? प्रभुपाद जी ने सुहृद शब्द की व्याख्या बहुत सुंदर करी है। कैसे करी है? हम लोग या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि वह किसी का कल्याण कर सकता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक भक्त कभी नहीं सोचता है कि वह अपना भी उद्धार कर लेगा, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास है कि भगवान सबका उद्धार कर लेंगे, इसलिए लोगों का हित करता है, यानी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं है। लेकिन ये नहीं कहता कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, वो कहते नहीं, सारे धर्मों को छोड़कर क्या भगवान कृष्ण के शरण में जाए, ये है सच्चा सुहृद।
और जो भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे मिता हो या माता हो या कोई भी हो, अगर भगवान से दूर लेके जा रहे हैं तो हमारे सुहृद नहीं है। मैं वो श्लोक तो भूल गया हूं, लेकिन यद्यपि परम स्नेह स्नेही करके श्लोक है ना, क्या कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही त्यज हो, ऐसे करके श्लोक है। जिनको भगवान श्री राम प्रिय नहीं है, चाहे वो कितना भी प्रेम दिखा रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। तो सच्चा सुहृद वही है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की स्मृति करा रहा, सिंपल ठीक है। सौ में गति, ऐसे भगवान मेरी गति अर्थात मेरे गंतव्य हो, मुझे प्राप्त हो। ये तो हमने श्लोक को इंट्रोड्यूस किया आपको, अब हम टीकाओं से थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। श्रीधरी, श्रीधरी मतलब श्री स्वामी की टीका, वो कहते हैं कि परमात्मा के अगर कोई प्रश्न करे कि भाई परमात्मा के स्वरूप को कोई जान ही नहीं सकता है, तो फिर एक श्रुति का वाक्य सुनते हैं कि तमेव विदित्वाति मृत्युमिति, भगवान को जानने से व्यक्ति मृत्यु को पार हो जाता है। और आप अभी पिछले श्लोक में बोल रहे हो कि कोई जान ही नहीं रहा है, देवता भी नहीं जान रहा है और कोई पशु नहीं जान रहा, कोई नहीं जान रहा है, कोई ऋषि नहीं जान रहा है, तो ये बात तो समन्वित नहीं लग रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यहां नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन एक प्रश्न उठाते हैं कि भाई श्रुति वेद कहता है कि भगवान को जान करके व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। आपने सुना ही है चौथे अध्याय भगवद गीता का श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सुवर्जन। स्पष्ट ना कि भगवान को जो जान लेता है वो मृत्यु से पार हो जाता है, और आप बोल रहे हैं कि कोई जान ही नहीं पाता, ये तो बात हमको संगत नहीं लग रही है। तो मान लो कोई ऐसा शंका करे तो यह श्लोक बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान को जान नहीं सकता है, लेकिन भगवान को जानने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं वह श्लोक का वर्णन कर रहा है। मैं कुछ समझा पा रहा हूं ठीक है, तो कैसे भगवान को जानेंगे, तो कह रहे अलोक, पहले ये श्लोक को आप श्लोक दिखाते रहेगा उसकी व्याख्या करने का प्रयास कर, अलोक व्रतम की व्याख्या कर दी गई है, ब्रह्मचर्य आदि, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य आदि है, दो अर्थ है ब्रह्मचर्य आदि के, ब्रह्मचर्य आदि मतलब ब्रह्मचर्य एक्सेट्रा, और ब्रह्मचर्य आदि मतलब जिसमें ब्रह्मचर्य जिसकी शुरुआत है। अब एकदम कोई भोग में ही पड़ा रहेगा तो भजन कैसे करेगा बताइए, हरे कृष्णा कर सकता है वो, लेकिन भगवान को प्राप्त करने वाला भजन करने की योग्यता भी नहीं है। ये नहीं कह रहे कि अब चार नियम का भंग करते रहो और तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आईआईटी कानपुर में आए थे, और महाराज बोले वी विल नॉट ब्लफ यू ऑन दैट, कि आपको कुछ नहीं करना है और चार नियमों का पालन भी नहीं करना है, ऐसा नहीं आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बड़ा अच्छा शब्द महाराज बोले, वी विल नॉट ब्लफ यू ऑन दैट, ब्लफ समझते हैं चीटिंग, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा हरे कृष्णा करिए और आप ठीक हो जाएंगे। चैंटिंग हरे कृष्णा एंड फॉलोइंग द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति चार नियमों का पालन करता है यानी पापों से बचता है, तुरंत काम करता है हरे कृष्ण मंत्र इमीडिएटली। और जो लोग नहीं करते हैं उनका थोड़ा समय लगता है, वो थोड़ा समय कितना समय है वो उसकी कोई गणना नहीं बता जा रही है। वन शुड बी वेरी, जो व्यक्ति करना चाहेगा वो इस प्रकार से करेगा, नियमों का पालन करेगा। अवर्णम का अर्थ ले लिया गया था अखंड रूप से, यानी कि आज किया और कल छोड़ दिया। और यही बात श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नाम में रुचि प्राप्त करना चाहता है तो केवल दो शब्द हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनु निदं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमा धवति तद्गद मूलहंत्री। तो प्रारंभ में हरि नाम और हरि कथा बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी अवस्था में होते हुए भी अनुनिदम और आदर, बड़े आदर पूर्वक ये भगवान से अभिन्न है, और अनु सॉरी मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अनुदिनम रोज, अनुदिनम का मतलब होता है निरंतर, मंडे को भी और संडे को भी। इसीलिए हमारे जो भक्त लोग नहीं आते हैं, हमारे हम लोग जूम पे जब करते हैं तो मैं सीधे एक ही मैसेज करता हूं, आपको पता है, आर यू डेड, क्या आप मर गए हैं। हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, वी आर लिटिल हार्श डिवोटीज, तो वैष्णव का क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अबे मर नहीं गए हो तभी तो नहीं आए, नहीं तो क्या कर रहे हैं उस समय सुबह 5 बजे। भक्त लोग जानते हैं हमारे संग जो सब हैं, तो वो भी मुस्कुरा करके स्वीकार कर, नहीं अभी मरे तो नहीं क्योंकि हमने भी गीता का श्लोक सुना है, न जायते मृयते वा कदाचित नायम भूत्वा, अभी मरे नहीं, अभी नहीं मरे, ठीक है। यानी जप छोड़ने का मतलब हुआ, जप में नहीं उठने का मतलब हुआ कि व्यक्ति को वो मर गया है। तो अवराम समझ रहे हैं, सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। देखिए हर रात्रि में आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं सुबह कैसे उठ के जप करूंगा, नहीं तो हो नहीं सकता। इफ वी आर प्लानिंग, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, वी आर प्लानिंग टू फेल। क्या टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है, ठीक है ठीक है, माला कहां भागी जा रही, माला के पांव थोना है। तो ऐसे भजन नहीं, अवर्णम अर्थात अखंड रूप से रोज करना चाहिए। सही बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो लोग चाहे किसी भी आश्रम में हो, आप सुबह 7-7:15 बजे तक माला कर लीजिए, एक विशेष प्रकार की संतुष्टि और सुख का अनुभव करेंगे। इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जो करते हैं, आप बहुत से लोग कर भी रहे होंगे, बल्कि बहुत 6 बजे भी करने वाले होंगे, सब वृंदावन में रहने वाले हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वह करके देखिए भगवान की तरफ से कितना सुंदर से प्रकाशन होता है। अखंड रूप से भूतात्म भूता अर्थात सभी भूतों में आत्म दृष्टि करने वाले सत्पुरुष, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति देहात्म भूत है, जो देह को मैं मान रहा है, उसके लिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी से वो राग और द्वेष ना करे, ये असंभव है। ये अच्छा लग रहा है, ये पिछली बार जब फीस्ट में आया था ना, इसी ने मना किया था गाजर के हलवे से। अरे आप यहां देखते होंगे कभी बार, तो हमारा ऐसा अनुभव है कि कभी कोई व्यक्ति आया, प्रभु जी आश्रम में रख लो, अच्छा फिर चले गए कभी मान लो उसके बाद, तो कभी वैसे व्यक्ति वही था सामने जा रहा था, उसने अपनी टोपी ऐसे नीचे कर ली, अरे हमने तुम्हारा ऐसा क्या कर दिया भाई, तुम खुद ही चले गए ना। वही व्यक्ति आपको चरणों में गिर रहा है, लिटरली चरणों में गिर रहा है, और वही व्यक्ति द्वेष करता है। इस जगत में ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि देह में आत्मबुद्धि करने वाला व्यक्ति राग और द्वेष कभी मुक्त हो जाए, हो ही नहीं सकता। वही व्यक्ति चिड़ मचाएगा। कभी कभी आप देखेंगे कि हुआ ऐसा, जूम की हमारी मीटिंग शुरू हुई उस दिन समहाउ अदर, क्या कहते हैं इसको, अनम्यूट करने का ऑप्शन ऑफ नहीं था, तो कहीं घर से आवाज आई, अरे तुम लोग पैदा ही क्यों हुए, आने का सच सामने आ रहा, बंद करो बंद करो, म्यूट कर दे, कोई माँ ही बोल रही थी अपने बच्चों को, अरे ये पैदा ही क्यों है कि नहीं। आप लोग कभी कभी डांट पड़ी होगी ना, वही माँ जो प्रेम कर रही तुरंत वही द्वेष भी करती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। भूतात्म भूता यानी कि ये अत्यंत प्रेम से भरा हुआ हृदय, अपने से व्यक्ति कौन प्रेम नहीं करता है, इट्स वेरी नाइस ना। वसुदेव दत्त जी को कौन पेमेंट किया था ये सोचने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सब लोग नरक, सॉरी मैं नरक चला जाऊं और सब लोग भगवान के धाम चले जाएं? ये प्रभुपाद जी को कौन बोला था कि जो लोग, जिन लोगों को वो जानते भी नहीं है, उनके लिए अपना जीवन दांव पे लगा करके वृंदावन से बाहर जाना, इतनी वृद्धावस्था में अमेरिका में प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी से इनके शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद बता रहे थे कि जब वो युवावस्था में थे तो वो एक बड़ी बड़ी मीनार पे चढ़ गए थे, कलकत्ता में चढ़ जाते थे ऐसे, तो प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आप बहुत अभय हैं, मतलब बहुत क्या कहेंगे उसको, हिंदी पूछ रहा हूँ, हिंदी क्लास है ना, फियरलेस तो मुझे भी पता है, निडर निर्भय थे। तो प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभुपाद ने कहा कि मैं अभी भी निर्भय हूं, I did not see left, I did not see right, I walked through fire to save you all. कोई व्यक्ति यहां 70 साल का व्यक्ति वृंदावन छोड़ करके कौन अमेरिका जाना चाहेगा, और उन लोगों के लिए जो उनको समझ लीजिए ना, कौन प्रभुपाद जी के, मैं तो कई बार बोल ही रहा था इस बात में कि मान लीजिए प्रभुपाद जी का शरीर उस नाव में छूट जाता, इसमें जा रहे थे तो क्या करते, क्या वहां अग्नि देने की समय व्यवस्था थी, आप मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आप समझ रहे हैं। तो कितना ज्यादा प्रभुपाद जी की दया थी कि अमेरिका जा करके वहां पे उनको भागवत का उपहार दे रहे हैं, यानी हाँ उस पर काफी कुछ कहा जाएगा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। भूतात्म भूत समझ रहे हैं, अत्यंत प्रेम से उनका हृदय भरा हुआ है, और ये क्यों है, क्योंकि भक्ति के द्वारा हृदय द्रवीभूत है। सौ में गति रस्तु, वो भगवान मेरे द्वारा प्राप्त हो। अब मेरे से ना 10 मिनट बाकी, तो हम सारी टीका कवर कर लेना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है, सारार्थ दर्शनी में चक्रवर्ती बात कहते हैं कि यद्यपि भगवान सभी के लिए अदृश्य हैं। किसके किस लिए अदृश्य हैं? देवताओं के लिए भी हैं, सिद्धों के लिए, लेकिन अलोक व्रत को ने लिया कि भागवत व्रत करने वालों के लिए वे दृश्य हैं, वह श्लोक से कहा गया, भक्ति करने वालों के लिए। अब यही बात माता कुंती भी कहती हैं, शुणवंति गायंति घृणंत भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति दवे हितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं शृण्वन्ति। ये भागवत व्रत क्या है? जो लोग भगवान के बारे में सुनते हैं, गायन्ति गृणन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति, वो स्मरण कर करके, अरे क्या बात बोली गई कथा में, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या तव हितम, आपकी लीला कथा को इस प्रकार सुनते हैं। कृष्ण सामने ही खड़े हैं और कुंती महारानी इस प्रकार से बोल रही, तो क्या हो जाता है उनको? तो कहते त एव पश्यन्ति, अब स्पष्ट समझ में आ गया, वही लोग देखते हैं। और यहां पे क्या लिखा है? दिदृक्षु, कनेक्ट किया आपने, वहां कुंती महारानी कहती है जो इस प्रकार से भगवान का भजन करते हैं, श्रवण कीर्तन में लगते हैं, वही भगवान के चरणों को देखते हैं, अर्थात अन्य लोग नहीं देखते। और यही बात यहां गजेंद्र बोल रहे हैं कि देवता भी अगर भजन नहीं कर रहा है तो कृष्ण को नहीं देख पाएगा, लेकिन भगवान का भक्त है, वो श्रवण कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, ऐसा भागवत व्रत ले रहा है तो वह भगवान को देखेगा, तो काफी टाइम लगेगा। तो कह रहे हैं तएव पश्यन्ति अचिरेणा, वो बहुत जल्दी देखेगा, तावकम आपको ही देखेगा, आपके आपके स्वरूप विस्तारों को नहीं देखेगा। और भव क्या था? तैव पश्यन्ति चिरण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को ही देखेगा, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं देखेगा, देखेगा। तो समझ में आ गया, लिंक कर पा रहे हैं। तो जो भागवत व्रत करने वाले हैं उनको ये एकदम सीधा विश्वास होना चाहिए कि हमें भगवान मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे? क्योंकि भागवत में लोगों को मिले हैं, अजामिलो अपी, जब अजामिल को मिला है तो मिले हैं तो हमको भी मिलेंगे। गॉट इट? ऐसे दृढ़ निश्चय के संग व्यक्ति भागवत व्रत का पालन करते हैं। पदम अथात चरण कमल। अब विमुक्त संघ का अर्थ देखिए, विमुक्त संघ का एक अर्थ आप समझ गए थे ना, त्यक्त संघ अर्थात इस जगत की आसक्ति से रहित। अब दूसरा अर्थ का आस्वादन कीजिए, कहते हैं जो मुक्त लोग हैं उनसे श्रेष्ठ भक्तों का संग करते हैं। कुछ कैच किया? वी मुक्त, जो मुक्तों से भी श्रेष्ठ हैं, मुक्ता नाम अभिसिद्धा नाम नारायण परायण, श्लोक पूरा कर सकता है कोई? मुक्ता नाम अभिसिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपि महामुनि। तो भक्त लोग मुक्त, हजारों करोड़ों मुक्तों में भी श्रेष्ठ हैं। तो कुछ ये आप लोग कैच कर पा रहे हैं, विमुक्त संगा मुक्तों से भी विशिष्ट। मुक्त का मतलब जो देहात बुद्धि से परे हो गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो भगवान को जान रहा है। तो विमुक्त संग, आप समझ में आया कि जो मुक्त पुरुष हैं उनसे भी, उनमें भी विशिष्ट जो भगवान के भक्त, उनका संग करते हैं। कैच किया सब लोग ने? नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलोक व्रतम, बड़ा सुंदर है, अलोक व्रत का अर्थ यहां पे ले रहे हैं चक्रवर्ती पाद, वर्णाश्रम के परे भागवत व्रत का पालन करने वाले। लोक व्रत क्या है? ये ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यास, वानप्रस्थ संन्यास, ये तो लोक व्रत है। आर एबल टू रिलिश दिस पॉइंट? लेकिन अलोक व्रत, इस वर्णाश्रम के परे जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है उसका पालन करने वाले, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? यद्यपि भक्त वर्णाश्रम में बैठे हुए आसीन दिखते हैं, लेकिन वह अपनी पहचान वर्णाश्रम में नहीं करते। अगर आप लोगों को स्मरण आ रहा हो महाप्रभु की बात, ना हम वर्णी नच नरपति इत्यादि, कि मैं इस वर्णाश्रम का नहीं भाग हूं, ना मैं सन्यासी हूं, ना कुछ हूं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के दासों का दास हूं। अर्थात यद्यपि व्यक्ति इस वर्णाश्रम स्थित रह भी सकता है, फिर भी उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वह उससे नहीं है, वह केवल भगवान की भक्ति करता है। तो अलोक व्रत का अर्थ समझ पाए। दूसरा, वर्णाश्रम के परे जो भागवत व्रत है, भक्ति का व्रत है, उसका वो पालन करते हैं। अवर्णम का क्या अर्थ है? ये बड़ा सुंदर अर्थ लिखा है। अवर्णम का अर्थ एक आपने सुना था निरंतर, और दूसरा यहां पर अर्थ लिया जा रहा है भ्रंश की शंका से रहित। मैं भक्ति कर तो रहा हूं, कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा। तो निरंतर तो भक्ति कर ही रहे हैं, और वे यह भी जानते हैं कि मान लो देह पूरा हो गया, शरीर छूट गया, तो भी ठाकुर जी अगले जन्म में भगवान की भक्ति अपनी भक्ति में ही लगेंगे। पूर्वाभ्यासी न तीन ह्रियते ही वशोपिसा, गीता भगवत गीता छठा अध्याय। पूर्व के अपने भक्ति के अभ्यास को वह जीवन में कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे जो उपस्थित भक्त हैं वो पहली बार भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, पूरा कोर्स नहीं हो पाया था पिछले जन्म में, वो पूरा आगे बढ़वा रहे हैं। क्या आप लोग उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? अवर्णम मतलब शंका से रहित, निश्चित भगवान की प्राप्ति करने वाला हूं, करूंगा। नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते सर्वमस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसी को कोट करते हैं, भागवत में कहा गया है, यानस्थाया नरो राजन न प्रमादेत करहिचित धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खले न पते दिह। यहां पे निमि महाराज को बोल रहे, हे राजन, जो व्यक्ति भगवान के प्रति इस भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, वह इस संसार में अपने मार्ग पर कभी कोई बड़ी भूल नहीं करेगा। यदि वह अपनी आंखें बंद कर लेगा, करके दौड़ लगा ले, तो भी वह न तो लड़खड़ाएगा न पतित होगा। कहने का क्या अर्थ है? अब आंखें दोनों बंद कर लें तो हमें लगता है यहां से सीढ़ी से उतरने में ही कठिनाई होगी, है कि नहीं? डोंट ट्राई इट एट होम। आंखें बंद करके चलेगा और न लड़खड़ाए तो इसका मतलब क्या है? तो उसका अर्थ है कि यद्यपि श्रुति एक आंख फिर भी दिख रहा है, स्मृति ने वो भी बंद कर दी, स्मृति और श्रुति का बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो, केवल इतना ज्ञान हो जाए कि कृष्ण मेरे प्रभु और त्राता हैं, तो अब भगवान तो वो कभी विफल नहीं हो सकता है। मैं ये बात को बोलना चाहूंगा, 15वें अध्याय के आखिर के श्लोकों में टीका में समझाया गया है भगवत गीता के, कि बस इतना समझ ले, मैं भगवान का नित्य सेवक हूं, भगवान कृष्ण मेरे नित्य स्वामी है, और भक्ति करके मैं पार हो जाऊंगा। तो वो व्यक्ति विफल हो ही नहीं सकता, बाकी वो शास्त्र ना भी समझ सके, इतनी बात उसको समझ में आ जाए कि कृष्ण मेरे त्राता हैं, मैं उनका नित्य सेवक हूं और उनका भजन करने लग जाएगा, तो वह भ्रंश रहित रहेगा। इसलिए ये श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है, ये 11:2:35 भागवत का श्लोक है, चक्रवर्ती पाद इसको कोट कर रहे हैं ये समझाने के लिए कि व्यक्ति भ्रंश से रहित रहता है। समय समाप्त हो गया, तो हम आगे की टीका को नहीं करेंगे, यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।